सुरक्षा में सदा तत्पर तैनात आप सभी मातृभूमि के वीर सपूतों को मेरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और ओम शांति। बचपन से मन में भाव था कि देश की इस प्रकार की सेवा मैं भी करूं, और आप सबके जेहन में भी ये बात अवश्य रही होगी, तभी आप सुरक्षा के, मातृभूमि की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। कुछ पंक्तियां किसी कवि ने बहुत खूबसूरत लिखी हुई हैं, जो बहुत प्रेरित करती हैं कि हे मातृभूमि, तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, तुझको प्रसन्न देखूं बस लालसा यही है, फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर लय हो। ये भावना सचमुच मातृभूमि के लिए जो शहीद होते हैं, जो उसकी गोद में सो जाते हैं, उनके लिए दिल से नमन निकलता है और साथ ही हम सबका शीश भी श्रद्धा से झुक जाता है। इसलिए शुरुआत मैं चाहूंगा कि आप सबको ज्ञात ही है, सुकमा में हमारे कुछ जवान शहीद हुए, कुपवाड़ा में भी हमारे जवान वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। उन शहीदों को हम एक मिनट खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि देंगे और पश्चात इस सत्र की शुरुआत करेंगे। उन वीर सपूतों को मौन श्रद्धांजलि। परमात्मा उन शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को शक्ति, देश के हर नागरिक को शक्ति कि वो हमेशा शहादत के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहे। एक हमारे बाहरी शत्रु हैं जिनसे हम जूझते हैं, और कुछ शत्रु समस्याओं के रूप में हमारे जीवन में हमेशा ही बने रहते हैं। उन्हें भी समाप्त करना, उन पर भी जीत प्राप्त करना, यह भी एक सुंदर वीरता है। 1.5 साल पहले हम लोग ओमान में थे। वहां पे एक बहुत ही सुंदर सा शहर है सुर, जो अपने टर्टल बीच के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां हम घूमने के लिए गए तो जो गाइड हमें गाइड कर रहे थे, उस्मान जी, उन्होंने एक बहुत प्रेरक सी बात कही। मित्रों, हमारे आज के विषय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कछुआ एक ऐसा प्राणी है, बहुत सारे कछुए उन्होंने दिखाए, बड़े छोटे, 200-300 केजी के भी कछुए थे तो छोटे कछुए भी थे। एक प्रेरक बात उन्होंने कही कि कछुआ एक ऐसा जीव है जिसका कोई भी प्राणी, कोई भी जीव या कोई भी पक्षी शिकार नहीं कर पाता। रीजन ये है कि जब भी एहसास होता है कछुए को कि कोई कठिनाई है, कोई खतरा है, तो अपने हाथ पांव को सिकोड़ लेता है, अंदर चला जाता है, और उसका कवच इतना कठोर होता है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। केवल एक पक्षी होता है जो उसका शिकार कर पाता है। आप जानते हैं कौन सा पक्षी? जानते हैं? बाज। बाज एक ऐसा पक्षी है, वो भी पहले प्रयास करता है, उन्हीं तमाम तरीकों को इस्तेमाल करता है कि मैं कछुए का शिकार करूं जो अन्य प्राणी, अन्य पशु पक्षी करते हैं। पहले वो भी बहुत प्रयास करता है कि मैं कछुए का शिकार करूं। बाकी सभी हार जाते हैं लेकिन बाज नहीं हारता। वो थोड़ा अलग हटके सोचता है कि कैसे मैं इसका शिकार कर सकता हूं। समस्या तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन इसका क्या समाधान हो सकता है? बाज हटके सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के। वो ये करता है कि कछुए को उठा करके बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, और ऊंचाई पर ले जाने के बाद उसे ऊपर से छोड़ देता है, और जब छोड़ता है तो नीचे आने के बाद कछुए का जो कवच है वो टूट जाता है और बाज उसका आसानी से शिकार कर लेता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, गिव अप न करने की आदत, कई बार हम भी समस्याओं को कई एंगल्स से सुलझाने की कोशिश करते हैं, नहीं सुलझता तो हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन अलग हटकर थोड़ा ऊपर उठकर के कैसे समस्याओं का निदान किया जा सकता है, इस पर शायद हम विचार नहीं करते। उसी कड़ी को, उसी मिसिंग लिंक को आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और वो मिसिंग लिंक है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। हम हर प्रकार के प्रयास करके तो देख लेते हैं, लेकिन क्या आध्यात्म भी एक तरीका हो सकता है हमारी समस्याओं के निदान के लिए? इस भी शायद गहराई से हम लोगों ने विचार नहीं किया है। और यही कारण रहा कि आदरणीय सूर्य भाई जी ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम शुरू किया पीस ऑफ माइंड चैनल में, समाधान नाम से, और उसका लक्ष्य ये रहा कि ये एक मिसिंग लिंक है जिसके जरिए आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लक्ष्य इस कार्यक्रम का ये रहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर कोहिमा से लेकर कच्छ तक कोई भी समस्याग्रस्त ना रहे, लेकिन उनका जीवन समाधान युक्त हो जाए। और जब ये समाधान 4 साल पहले देना शुरू किया गया, इतने सुंदर रिजल्ट्स आए कि हम भी अवाक रह गए। चंद चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, हजारों एग्जांपल्स हैं, उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके ध्यान में आए कि आज की चर्चा किस विषय पे है, और आप भी अपनी समस्याएं, अपनी बातें, अपने आसपास जो चीजें आप देखते हैं उसका क्या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हो सकता है वो भ्राता जी से आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर पहला प्रयोग, कुछ ऐसे बिल्कुल डल विद्यार्थी जो बिल्कुल डल थे, जिनके कभी 28% मार्क्स आया करते थे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद उनका जो ये परसेंटेज है रिवर्स हो गया, 28.82 हो गया। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 100 out of 100 मार्क्स लाए, उनका रिजल्ट 100% रहा, एकाग्रता बहुत बढ़ गई, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई सिंपल प्रैक्टिसेस करने से। और आप भी इसे 2-4 हो रहे होंगे, आपके बच्चे इसे 2-4 हो रहे होंगे, आपको सुंदर नुस्खे इसके प्राप्त होंगे। दूसरी चीज, कई बार कोर्ट में केसेस बहुत लंबे चल रहे होते हैं, एक व्यक्ति ने आकर के भ्राता जी से ही शेयर किया कि 35 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, मेरे पिताजी भी लड़ते आ रहे थे और उनके बाद मेरी बारी आ गई। और आपको पता होगा कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी कोर्ट केस चलते रहते हैं कि मेरे परदादा भी लड़ते आ रहे थे, मेरे पिताजी ने भी लड़ा और अब मैं इस युद्ध के मैदान में उतर गया हूं, अब मैं भी लड़ रहा हूं, और संभव है कि मेरा आने वाला जो छोटू है वो भी इस मैदान में कूद पड़े बड़ा होने के पश्चात, राइट? उन्होंने ये अनुभव सुनाया कि 35 साल से कोर्ट में जो पेंडिंग था केस, 21 डेज की सुंदर अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास से वो केस पूरी तरह सुलझ गया। 35 साल एक लंबा समय, और कहां 21 दिन का सुंदर सा अभ्यास। आश्चर्यजनक लगता है लेकिन ये सत्य है। कई ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, उनके इलाज संभव हो गए। एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल, जामनगर से हमारे पास फोन आया, एक भाई ने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि उनके पास फोन आया कि आपके कोई संबंधी हॉस्पिटलाइज हैं और बिल्कुल अब अंतिम समय आ गया है, आप सब अपने संबंधियों को लेके आ जाओ। ये सब अपने संबंधियों के पास वहां पहुंच गए। वेंटिलेटर हटाने की बात थी, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, हटाने की बात हो रही थी कि हटा दिया जाए क्योंकि और ऑर्गन्स जो हैं अंदर से बिल्कुल वीक होते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। लेकिन वो भाई प्रोग्राम देखा करते थे, विद्यालय से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें एक लास्ट प्रयास आप करने दीजिए और ये जो सिस्टम है सिस्टम लगे रहने दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने मान लिया। अब इन्होंने प्रैक्टिसेस, योग की प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी और एक विजन सुंदर जो हमेशा भ्राता जी देते हैं बनाना शुरू किया योग के साथ साथ, कि 21 डेज अच्छे योग के अभ्यास के बाद ये जो पेशेंट है अपने पैरों पे चल करके अपने घर जाएगा। आश्चर्यजनक बात है, विश्वास कोई नहीं करेगा लेकिन ये संपूर्ण सत्य है। 21 डेज के मेडिटेशन के बाद वो जो पेशेंट जिसको डॉक्टर ये कह रहे थे कि इसका सिस्टम अब हटा दिया जाए क्योंकि अंदर से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वीक होते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, 21 डेज के बाद वो पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने घर गया। इसके लिए तो तालियां बजती हैं। मेंटल इलनेस बढ़ती चली जा रही है और ऐसे ऐसे मेंटल इलनेस कि आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे। हर जगह चाहे वो जयपुर का मानसिक चिकित्सालय हो, चाहे दिल्ली का मानसिक चिकित्सालय हो। अजमेर से हमारे पास एक मेल आया था, उन्होंने हर जगह भारतवर्ष के मानसिक चिकित्सालयों में चक्कर लगा लिए थे, डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए थे, लेकिन 6 महीने की प्रैक्टिसेस के बाद उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो जानवरों की तरह हो गई थी। वो बहन खाना भी जानवरों की तरह खाना, व्यवहार उनकी तरह करना, किसी के घर में भी जाके ठोक पीट करना। लोग ये कहने लगे थे कि भाई इसको आप कहीं पहुंचा दीजिए ना, पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं। लेकिन उनकी बहन इस प्रोग्राम के द्वारा, समाधान के द्वारा उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस किए, 6 महीने के बाद उन्होंने बहुत सुंदर गुड रिजल्ट सुनाया कि अब वो बहुत अच्छी तरह से भोजन भी करती है, घर के कामों में मदद भी करती है, शांत हो गई है, मेडिटेशन करने लगी है। क्या है? मैं उस एंगल पर, उस चीज तक आपको लाना चाहता हूं जहां से शायद हम लोगों की पहुंच नहीं थी, या पहुंच थी तो शायद विश्वास नहीं था। वो एक स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, जिसमें इतनी शक्ति है, बल है कि हमारी सारी समस्याओं को निर्मूल कर सकता है। तो ऐसे सुंदर सुंदर जो एक्सपीरियंस हुए हैं, उन एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाने वाले या उन्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देने वाले आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ हैं, जो पूरे ही विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं, भारत भर का भ्रमण करते रहते हैं, सब में आध्यात्म ज्योत जलाते रहते हैं, निराश आत्माओं में आशा के दीप प्रज्वलित करते रहते हैं। सूर्य का काम ही है रोशनी देना, तो ऐसे सबको रोशनी देने वाले आदरणीय सूर्य भाई जी का हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियां बजती रहे आदरणीय भ्राता जी के लिए। भ्राता जी हम सबके लिए प्रकाश है, ऊर्जा है, शक्ति है, हम सबके अंदर एक ज्योति जलाने वाले हैं, और लाखों आत्माओं को इन्होंने आध्यात्म के पथ पर प्रेषित किया है, आगे बढ़ाया है, और उनके जीवन को हरियाली से परिपूर्ण कर दिया। जोरदार करतल ध्वनि आदरणीय सूर्य भाई जी के लिए। आदरणीय भ्राता जी 1964 में इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, और 1968 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, उनके रहते हुए, उनके सम्मुख ही आपने अपना जीवन इस आध्यात्मिक मार्ग में समर्पित किया विश्व कल्याण के लिए। बीएससी करने के पश्चात एक ऊंचा लक्ष्य था कि मैं वैज्ञानिक बनूं। वैज्ञानिक तो आप बने, लेकिन ऐसे वैज्ञानिक बने जिस वैज्ञानिक की आवश्यकता आज संसार की हर एक आत्मा को है। आपने अपने आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा जन जन के जीवन में शांति और सुकून को पहुंचाया है। विश्व के अनेक देशों में आपने भ्रमण किया है, लगातार आप व्यस्त रहते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि आज एक घंटे आदरणीय भ्राता जी हम सबके साथ हैं, तो इनका पूरा पूरा हम लाभ लेंगे। आपके पास भी जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप भ्राता जी के सम्मुख अवश्य रखिएगा, लेकिन शुरुआत प्रश्न से मैं भ्राता जी से कर रहा हूं। भ्राता जी, ये जो एक चीज आपने शुरू की समाधान के रूप में, इसकी प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई कि संसार को आध्यात्म की आवश्यकता है, या आध्यात्म ही वो जरिया है जिसके द्वारा संसार में जितनी भी समस्याएं दिख रही हैं उनका निदान हो सकता है?
ओम शांति। आप सभी तो समस्याओं से मुक्त हैं ना? संसार में शायद ही कोई मनुष्य हो जो पूरी तरह मुक्त हो, कोई ना कुछ तो चीज पीछे लगी रहती है। मैं ये कहा करता हूँ कुछ अनुभवों से कि हर परिवार में जिसमें 5-6 लोग हों, एक व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जो सबकी परीक्षा लेता रहे। जरूरी भी है ना, हम कितने पानी में हैं पता चलता रहे जरा। तो मेरे पास बहुत पहले से ही मेरा कुछ ऐसा, क्या कहूँ मुझे पता नहीं, बहुत लोग फ्रेंड बनते हैं, तो बहुत लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर। मैं छोटी बातें उनको बताता था, कुछ फायदे होते थे, मुझे भी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं थे, परंतु एक बहुत अच्छी बात, हम लोग डेली ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं सवेरे, तो एक बहुत सुंदर बात उसमें आई, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही सुंदर एक लाइन की थी, समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, और मैंने सोचा कि यदि कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी करेगा। मैंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट शुरू किए कि केवल संकल्प करने से कोई आने वाली समस्या कैसे समाप्त हो जाती है। पता चलता गया कि मनुष्य, देखिए पिछले 25-30 सालों में ही हमारे देश में विकास बहुत हुआ है हर फील्ड में, परंतु बहुत जानकारियों के बाद, बहुत एजुकेशन के बाद, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद, फाइनेंशियली हम बहुत आगे निकल गए। आप सब सर्विस मैन हैं, जानते होंगे जब आपने सर्विस ज्वाइन की कितनी थोड़ी सैलरी होती थी। सब कुछ आगे निकल गया, पर मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता गया। अगर हमें अपनी शक्तियों की याद रहे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, तो अनेक समस्याएं हमारे पास आएंगी ही नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, सदैव आपने सुना भी होगा, शेर का बच्चा क्या होगा। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हम भी तो कुछ होंगे या नहीं, या हमारा परमपिता सर्वशक्तिवान और हम बिल्कुल कायर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस शक्ति को भूले हैं सभी, तो ये आभास होता रहा। तो मैं ये सब प्रैक्टिस खुद बहुत की है, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं केवल दूसरों को कराऊंगा। जो एक्सपेरिमेंट मुझे करने थे वो मैंने पहले अपने पे किए, और जो अपने पे नहीं होते वो दूसरों पे किए। जैसे डिप्रेशन के पेशेंट आने लगे, एक मनोरोग चिकित्सक ने मुझे साफ साफ बता दिया कि डिप्रेशन की कोई दवाई संसार में नहीं है। मैंने पूछा, सच्ची बात तो ये कि वो खुद भी डिप्रेशन में था और मुझसे मिलने आया था परिवार सहित। तो जब मैं उसको हंसने लगा कि आपके पास तो बहुत दवाइयां होंगी, कहा मैंने हजारों पेशेंट ट्रीट किए हैं, उसके सब थे ये, लेकिन मैंने एक पेशेंट भी ठीक होते नहीं देखा। अब मैंने सोच लिया, मेडिकल साइंस जहां फेल होती है वहां स्पिरिचुअल साइंस बहुत प्रभावी हो जाती है, तो मैं सोचा इसके लिए मैं काम करूंगा। मैंने उसको भी कुछ विधि सिखाई, तब मैं अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर ही रहा था इस सब्जेक्ट पे, डिप्रेशन और रात को नींद ना आना, ये दोनों समस्याएं जो विकराल होती जा रही हैं आजकल। तो हमने छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा इन रोगों को ठीक होते देखा, तो बहुत अच्छे अनुभव हो गए। कई लोग मुझे सोचते हैं मैं भी डॉक्टर हूं, पर मैं आपको बता दूं, मैंने एक भी मेडिकल की किताब देखी भी नहीं, पढ़ना तो दूर, थोड़ा बहुत होम्योपैथी और नेचर की ओर की किताबें पढ़ लेता हूं। तो पता चला कि हमारी मेडिकल साइंस, एलोपैथी विशेष रूप से, जिसपे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और डॉक्टर्स की बहुत कमाई हो रही है रोज, वो इनकम्प्लीट है। उन्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, बहुत बीमारियां और भी ऐसी हैं जिनकी डॉक्टर दवाई देते रहते हैं और फाइनली बता देते हैं जब कुछ नहीं होता कि भाई इसकी दवाई दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर लोग हमारे पास आते हैं कि क्या किया जाए। तो मैंने जो कुछ किया उसका आधार ये राजयोग है, उसका आधार मन की शक्ति का प्रयोग है, और उसमें भी मुझे बहुत सारा अनुभव हो गया सबकॉन्शियस माइंड की पावर का, अंतर मन जिसे अवचेतन मन कहते हैं इंग्लिश में, सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें बहुत सारे प्रयोग कराए और उसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर आने लगा। तो ये जो दूसरों के अनुभव थे, यही हमारी विजडम बन गई बिना पढ़े कहीं कुछ। तो मुझे ये पता चल गया कि विजडम किताबों से नहीं मिलती, विजडम मनुष्य को अंदर से उपजती है। ऐसे ऐसे समस्या और प्रश्न लेकर भी लोग आ जाते हैं जिनके बारे में न आपने कभी सुना, न संसार में किसी ने सुना, और वो हमें सुनाते हैं। तब हम क्या करते हैं उसके समाधान के लिए, हम क्योंकि योग अभ्यास बहुत अच्छा करते आए हैं, मैंने 52 इयर्स से योग की साधना बहुत अच्छी की है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, बहुत ही अच्छी की है, तो तुरंत हम अपना लिंक करते हैं ऊपर सुप्रीम से, और इस समस्या का क्या समाधान है वो तुरंत हमारी बुद्धि में आ जाता है। तो ये एक बेस बनता है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक माँ अपने लड़के को लाती है, ये बहुत होशियार है पढ़ाई में पर मैथमेटिक्स में बिल्कुल डल है, इसलिए इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम रह जाती है, आनी चाहिए 95, इसकी 75 या 70 रह जाती है, ये बड़ा निराश होता है, मैथमेटिक्स में इसके अच्छे नंबर आए क्या करें। तो मैंने पूछा कि आपने ट्यूशन ये वो सब करा के बहुत मेहनत करा इससे, लेकिन इसकी रुचि नहीं पैदा होती, इसको उसमें एकाग्रता होती नहीं, और छोटी छोटी चीजें उसको समझ में नहीं आती, बाकी सब सब्जेक्ट में होशियार है ये। इवन जो आप में से साइंस के स्टूडेंट रहे वो जानते होंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों बहुत जुड़े रहते हैं। कहा ये फिजिक्स में बहुत होशियार पर मैथमेटिक्स में नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, मैथमेटिक्स में जो होशियार ना हो वो फिजिक्स में तो होशियार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी ये सब पढ़ा था। तो अचानक मैं सोचा इसके लिए क्या किया जाए, तो ऊपर से तुरंत इंट्यूशन आ गया, ये इसको बताओ। तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। जैसे रुपेश भाई ने कहा, एक लड़की जिसके शायद इंग्लिश की बात थी, 28 मार्क्स आए थे, और उसकी टीचर ये ज्ञान योग का अभ्यास करती थी, वो ये सब सुनती थी, उसके पास जब वो ट्यूशन पढ़ने आई तो उसने वो सब एक्सपेरिमेंट उस लड़की पे कराए और उसके 82 आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया, और जैसा आपको रुपेश भाई बता रहे थे, ऐसे वंडरफुल अनुभव हमारे पास आए जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थे। हम भी नहीं सोच पाते थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। केस की बात तो एक बताई, कोर्ट केस की, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के पैसे फंस गए थे दूसरी जगह, लोगों ने माल ले लिया था, गवर्नमेंट के पास फंस गए थे, गवर्नमेंट बदल गई थी, ऑफिसर्स बदल गए थे, उनके कितने कितने करोड़ रुपए फंसे हुए थे, योग अभ्यास के द्वारा वो सब वापस आ गए। तो योग से मैंने ये देखा, ये जो पावर ऑफ माइंड का प्रयोग है, इससे हम दूसरों के मन को बदल सकते हैं, इस सिद्धांत से हम शत्रु को मित्र बना सकते हैं। पति पत्नी के झगड़े लेकर बहुत लोग आते हैं, हम उनसे इसी सिद्धांत के आधार से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड छोटे छोटे प्रयोग कराते हैं, और 7-7 दिन में, 11 दिन में, किसी का 21 दिन में संबंध स्वीट हो जाते हैं, बिगड़े हुए नाते सुधर जाते हैं। जो बिल्कुल शत्रु भाव, वैर भाव रखते हैं, हमेशा बदला लेना चाहते हैं, वो मित्रवत हो जाते हैं। तो ऐसे हजारों सफल प्रयोग हुए हैं, और हमें तो खुशी होती है कि जब मनुष्य चारों ओर से हार मान जाता है, जब वो निराशा के अंधकार में चला जाता है, कहीं भी आशा की किरण नहीं दिखती, तब वो यहाँ आकर योग सीखकर, परमात्मा से जुड़कर, अपनी शक्तियों को पहचान कर, अपने चित्त को शांत करके समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे कम से कम 10,000 अनुभव आ गए होंगे जीवन में। चलते फिरते बता देते हैं लोग, हम डॉक्यूमेंटेशन तो करते नहीं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, चलते फिरते बता रहे हैं। देखो वंडरफुल केस, एक युवक हकलाता था, नहीं हकलाते हैं, बोलने में थोड़ा गड़बड़ होती है, अब वो था टीचर बेचारा, अब टीचर हकलाए तो स्टूडेंट मजाक भी करते थे और उसको बड़ी लज्जा आती थी। तो मैंने उससे कुछ प्रयोग कराए, तो अभी आया था पीछे हमारे यहाँ, कहा मेरा हकलाना लगभग ठीक हो गया, 5% बचा है, उसका किसी को पता नहीं चलता है तो मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। 3 माताएं बुजुर्ग, एक की आयु तो 75 ईयर्स, एक 70 ईयर्स, एक की 65 ईयर्स, जो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी, ये अपने में चमत्कार ही था। और मैं तो ऐसे ही उन्हें बताई कुछ कुछ चीजें, और 3 की आंखें खुल गई, अब वो पढ़ लिख सकती है, काम करती है, चल फिर सकती है, नो प्रॉब्लम, बुरी लाइट आ गई आंखों में। तो इसमें एक भावना भी बहुत काम करती है, विश्वास। कौन व्यक्ति उन अभ्यासों को दृढ़ता पूर्वक करता है, ये बहुत सारी चीजें, अपने में भी विश्वास, न केवल दूसरों में या हम में, लेकिन अपने में भी बहुत कॉन्फिडेंस, जिसके लिए बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं होता जीवन में। तो इस तरह से ये चीजें होती है। मैं ब्रीफ में दो मिनट में ही एक छोटी सी चीज बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। समस्याओं के तीन मुख्य कारण दिखाई देते हैं। पहला, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचता है कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां कोई समस्या ना हो। कहा चलो मेरे साथ, चलते हुए ले गया उसे शमशान में कि यहां लेट जाओ, कोई समस्या नहीं होगी। उसने कहा पर यहां तो मैं मरने के बाद आऊंगा। तो इस महात्मा ने उत्तर दिया, जीवन है तो कुछ समस्या तो रहेंगी, डोंट वरी, उनको पार करते चलो, वो आपको अनुभव देंगी, वो चैलेंजेज हैं, आपकी शक्तियों को बढ़ाएंगी, बहुत चीजें ऐसी हैं। अगर हम उनको चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लें और उनको समस्या माने ही नहीं, तो वो समस्या होती नहीं। कईयों की नेचर होती है छोटी छोटी बातों को समस्या मान लेना, लेकिन बड़ी बातों को भी समस्या ना माने तो समस्या समस्या लगेगी नहीं। दूसरा कारण है, मनुष्य का अपना स्वभाव बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। सबको अनुभव है, किसी व्यक्ति में लड़ने का, क्रोध का संस्कार हो, बिना मतलब की समस्याएं। किसी में बहुत इच्छाएं रखने का संस्कार हो, बिना मतलब की समस्याएं। दूसरों को बुरे वचन बोलने का संस्कार हो, रोने रूसने का संस्कार हो, दुखी रहने का संस्कार हो, तो सेंसिटिव माइंड, निगेटिव माइंड अनेक समस्याओं को समस्या फील कराता है, जबकि वो समस्याएं होती नहीं, वो बातें होती हैं सिंपल, पर मनुष्य को लगता है बहुत समस्याएं हैं संस्कारों के कारण। हम अपने को बदल लें तो समस्याएं रहती नहीं। और तीसरा है, जिसका समाधान केवल राजयोग है, वो है पूर्व जन्मों में किए गए विकर्म, पाप कर्म, जो हमारा पीछा कर रहे हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। रोज हमारे पास तो कितनी घटनाएं आती हैं, उससे कोई नहीं बच सकता संसार में। केवल राजयोग के बल से पूर्व के पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, और तब मनुष्य का जीवन निष्कंटक, निर्विघ्न, समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो ये तीन कारण हैं। अब आप चर्चा करेंगे हम सभी, आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटी छोटी विधियां, कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, कोई भारी प्रयोग कुछ नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह करना होता है। हाँ रूपेश भाई,
सार में ब्रदर जी आपने सब बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं। एक बहुत ही प्रेरक सी बात जो मेरे साथ साथ आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि हम सबके दिल में आशा का एक दीप प्रज्वलित हो गया है। किस किस के दिल में ये प्रज्वलित हो गया है, जरा हाथ उठाएंगे प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि नई परिस्थितियां, बातें जो भी हैं वो बदल सकती हैं और हम प्रकाश की ओर चल सकते हैं, इसकी पहली आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि बहुत सारी बातें और प्रश्न आप हर एक के पास होंगे। एसेंस में जो बातें सबके पास आती हैं, उन बातों को पहले हम ब्रदर जी से क्लियर कर लेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले ब्रदर जी, एक प्रश्न, जैसे आप कह रहे थे कि संसार में है तो समस्याएं तो लगी ही रहेंगी, लेकिन एक चाहना हरेक की होती है हम में से कि मेरा जीवन पूरी तरह से समाधान युक्त हो, कोई समस्या ना हो, कोई विघ्न ना हो। क्या ये संभव है, और है तो क्या?
ये इच्छा तो सबकी होती है, क्योंकि सुख शांति भरे जीवन में यदि कोई व्यवधान आने लगे, हर मनुष्य सोचता है ये क्या आ गया, बचो इससे किसी भी तरह। लेकिन सचमुच ऐसा भी संभव है कि जीवन समस्याओं से मुक्त रहे, फिर भी जैसा मैंने आपको कहा पूर्व जन्मों के इफेक्ट्स समस्याओं के कारण अवश्य बनते हैं जिसपे हमारा अब बस नहीं चलता। लेकिन अब अगर हम सहज भाव से जीवन जीना सीख लें, सहज इजी गोइंग नेचर, तो समस्याएं सहज रूप से समाप्त हो जाएंगी। ये भी मैंने 71 में ईश्वरीय महावाक्यों में सुना था 1971 में, तुम अगर बहुत सरल चित्त होकर रहोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी सरलता से समाप्त हो जाएंगी। इस पर मैंने बहुत सारा काम किया अपने पूरे जीवन में और ये देखा कि सचमुच समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। मैंने कभी कभी ऐसा भी प्रयोग किया अपने लिए कि मैं किसी भी बात से, किसी समस्या से ज्यादा रिएक्ट न करूं। ठीक है, जैसे समस्या अलग खड़ी है, मैं अलग हूं, जाओ, इसको जाना ही है क्योंकि संसार का खेल ऐसा है, इसमें एक बात आ रही है और जा रही है, गतिमान है, मैं रिएक्ट न करूं। तो मैंने अनुभव किया कि जब रिएक्ट नहीं किया तो वो चली गई, खत्म हो गई। मनुष्य ज्यादा रिएक्ट करता है तो छोटी छोटी बातें उसे समस्या लगती है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अभी मेरे पास आया, आप समझ जाएंगे कि समस्याओं से मुक्त जीवन भी जिया जा सकता है। और अगर छोटी मोटी बातें आती हैं तो सहज विधि से उन्हें पार करके ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि समस्याएं हैं नहीं। एक लड़की का डिवोर्स हुआ, उसकी माँ ने कॉन्टेक्ट किया, कहा मेरी लड़की बैठी है, इसका डिवोर्स हो गया है, परेशान रहती है। मैंने कहा इसे बात कराओ। मैंने उसे पूछा क्यों डिवोर्स हुआ, हंसने लगी। मैंने कहा तुम तो हंस रही हो कि बात हंसी की है, मेरी एक छोटी सी कमी के कारण डिवोर्स हो गया और वो ये है मैं बहुत बोलती हूं। कहा मेरा पति मेरे से तंग हो गया, वो कहता है भाई चुप तो रहो थोड़ा, हमें भी तो बोलने का मौका दो, सास भी तंग, ससुर भी तंग और जो परिवार। कहा मैं नॉन स्टॉप बोलती थी और मैं भी सोचती थी कि मैं थोड़ा चुप तो रहूं, पर वो संस्कार ऐसा प्रबल था कि मैं चुप नहीं रह पाई। आखिर उन्होंने हाथ जोड़े, अभी कहा डिवोर्स दिया नहीं है पर मुझे कह दिया अपने घर जाओ, बाद में डिवोर्स करेंगे। तो मैं सोच रही हूं मेरा ये संस्कार कैसे बदले। तो आप देख लें समस्या है कहाँ, एक छोटे से परिवर्तन से जीवन सुखी हो सकता है। हम अपने को चेंज करते चलें। समस्याओं के दूसरे कारण मनुष्य का क्रोध और अभिमान, इनको यदि हम कंट्रोल कर लें तो अनेक समस्याएं आने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसा जीवन जीना सीख लें। हमारे यहाँ हम देखते हैं, ये पर्सनल अनुभव है हम में से हजारों लोगों के, जो व्यक्ति सवेरे उठकर रोज बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, एक तो आज आपने थोड़ा किया, अभी तो आप सीख रहे हैं, जो परमात्म मिलन का सुख ले लेते हैं सवेरे सवेरे, जो अपने को चार्ज कर देते हैं सवेरे सवेरे, उनका जीव पूरा दिन समस्याओं से मुक्त रहता है। दूसरी चीज होती है ईश्वरीय महावाक्य यहाँ सुनाए जाते हैं। ईश्वरीय महावाक्यों से क्या हो रहा है कि रोज हमारे विचार बदल रहे हैं, ये बहुत बड़ा फायदा हमें रोज होता है। कोई बात हमारे मन को भारी कर रही हो, जब हम वो महावाक्य सुनते हैं तो हमारा मन लाइट हो जाता है। जो बात हमें समस्या लग रही थी वो लगती नहीं है। तो ऐसी रूटीन बनाना जीवन की, ये समस्याओं से मुक्त रहने का तरीका है।
सुंदर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं और भ्राता जी जो बोलने की बात कह रहे थे उससे एक बात मुझे याद आई कि दो दोस्त बहुत समय के बाद मिले। एक दोस्त ने कहा, शादी हो गई थी दोनों की, एक दोस्त ने कहा कि यार मेरी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट है, वो किसी भी विषय पे एक घंटे भाषण कर सकती है। तो दूसरे दोस्त ने कहा बस मेरी पत्नी तो बिना किसी विषय के सारे दिन भाषण कर सकती है। शायद ये दूसरी प्रकार की पत्नी थी। दादा जी, बीमारियां हर एक को छोटी या बड़ी रहती हैं, या किसी न किसी मित्र संबंधी को, परिजन को रहती हैं, और बीमारियों पे बहुत प्रयोग आपने किए हैं, कराए हैं। तो बीमारियों पे, जो शारीरिक बीमारियां हैं, किस प्रकार के अभ्यास और प्रयोग किए जाएं ताकि वो दूर हो जाए?
मैं बहुत थोड़े में बता देता हूँ। वैसे तो ये बातें टीवी अगर आप देखते हो, कम से कम 100-100 बार एक चीज हम लोगों ने बताई है, ताकि जब भी जो सुने काम करे। एक तो बीमारियों की जड़ इधर है, ब्रेन में। ब्रेन अधिकतर लोगों के बहुत कमजोर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ निगेटिविटी। तो यहां से शुरुआत होती है बीमारियों की। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, और उस पानी पर हमारे बुरे विचारों का, हमारे मन में बसी हुई नफरत का, जो कुछ भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनका बहुत बुरा इफेक्ट आता रहता है। छोटा सा एग्जाम्पल, जहां से मैंने ये शुरू किया था, जापान के वैज्ञानिकों ने पानी पर खोज शुरू की, 2 गिलास में पानी लिया, 1 गिलास पर लिख दिया था लव, दूसरे पे लिख दिया था नफरत। सारी रात दोनों गिलास बंद करके एक रूम में, एक टेम्परेचर में, अंधेरे में रख दिए गए। सवेरे जब अपने इंस्ट्रूमेंट से पानी को चेक किया तो क्या पाया, जिसमें लव लिखा था उसमें गोल्डन किरणें आ गई थी, बहुत सुंदर बन गए थे डायमंड कलर के, गोल्डन गोल्डन। जिसपे नफरत लिखा था उसमें काले। उसे देखकर अगर आप उन इंस्ट्रूमेंट से देखो तो लगेगा इसको तो शरीर को टच भी नहीं कराएं, फेंक दो इसको। यहां से मैंने अपने पानी के प्रयोग शुरू किए थे। जब मैंने वीडियो देखी, 5 मिनट का क्लिप मुझे दिखाया गया था, तो जिस मनुष्य के मन में नफरत बसती हो, सोच लो, क्रोध बसता हो, निगेटिविटी बसती हो, दूसरे के लिए बुरे भाव बसते हो, उसके शरीर के पानी का क्या हाल होता होगा? एब्सोल्युटली डर्टी, ब्लैक। तो उस कारण बहुत बीमारियां हो रही हैं। और एक और कारण जो मैं पहले बताया, पूर्व जन्मों से भी बीमारियां चली आती हैं। ये बात अति सूक्ष्म है, हमारी मेडिकल साइंस इसको नहीं जानती। मेरे पास एक सिविल सर्जन आई, बेंगलोर में था मैं, कहा, उसने ज्ञान लिया था 1 साल से, कहा, हम सभी डॉक्टर एक केस देखकर बड़े हैरान हैं कि एक 5 साल की लड़की को कैंसर है। मेडिकल साइंस इसका उत्तर ही नहीं दे पा रही कि 5 साल की लड़की को कैंसर क्यों। उसके बाद तो और भी घटनाएं हो गई, जन्म लेते ही बच्चा डायबिटिक है, जन्म लेते ही बच्चा हार्ट पेशेंट है, जन्म लेते ही उसके हार्ट में छेद हैं। तो मेडिकल साइंस के पास इसके उत्तर नहीं, लेकिन पूर्व जन्मों के इफेक्ट, मान लो पूर्व जन्म में एक व्यक्ति की मृत्यु सीवियर डायबिटीज से हुई है, तो उसके सूक्ष्म शरीर में डायबिटीज का पूरा अंश रह जाता है, और जब वो नए गर्भ में प्रवेश करती आत्मा, तो उस शरीर में भी वो प्रिंट हो जाता है, और बच्चा डायबिटिक ही जन्म लेता है। अब इसको मेडिकल साइंस न ट्रीट कर सकती, न जान सकती, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस इसको ट्रीट करती है। कईयों के हार्ट में हुए छेद बहुत जल्दी ठीक हो गए, हमने उन्हें छोटी विधि बताई। एक अनुभव, एक बच्चा अमेरिका का, गुजराती परिवार का, उसके हार्ट में 2 छेद। उसकी दादी ने फोन किया मुझे कि बच्चा जन्म लिया, अभी 10 ही दिन का है, 2 छेद आए हैं हार्ट में। डॉक्टर कहते हैं अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको अगर हार्ट का ऑपरेशन भी करना तो 12-14 साल का है, जब होगा, अगर तब तक जिया तो ऑपरेशन कर देंगे। मैंने उसको सिंपल विधि बताई, दाएं हाथ से जहां छेद हैं उसको एनर्जी दो ऐसे रख के, और आप हैरान होंगे 10-12 दिन में छेद लोप हो गए। ये इतनी अच्छी, इतना अच्छा अनुभव था। और ऐसे 7 केस हुए, 7। शुरू हुआ पूना की एक लड़की से जो 19 साल की थी, उसके हार्ट में भी 2 छेद थे। 40 दिन उसकी माँ ने उस पर प्रयोग किए, उसके छेद भरे, वहां से हमें ये अनुभव आया कि ये छेद योग के अभ्यास से भरे जा सकते हैं। तो पानी को चार्ज करना हमने शुरू कराया कि पानी पे नजर डालकर कुछ अच्छे संकल्प उसको दें सात बार। उसमें दो संकल्प बहुत अच्छे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। तो ये पानी चार्ज होता है और जब हम इसको पीते हैं तो ये जो शरीर में पानी है उसमें ये मिक्सअप होता है और अनेक बीमारियों को ठीक करता है। दो चीजें। तीसरी चीज, एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बहुत अच्छा है, सभी उसको कर सकते हैं कि सोने से पहले जो बीमारी हमें है उसके बारे में हम 5-7 बार संकल्प कर दें, मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया हूं, मैं इस बीमारी से मुक्त हो गई हूं, ये मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है, सच्चे मन से 7 बार। ये केवल ब्लाइंड फेथ की बात नहीं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है। जब हमें नींद आती रहती है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुप्रीम सर्जन है, वो सारी रात उसको ठीक करेगा और कुछ ही दिनों में बीमारियां ठीक होती हैं। तो ऐसे कुछ प्रयोग हमने सिखाए, ब्रेन को एनर्जी देना बहुत वंडरफुल रिजल्ट रहे, डिप्रेशन नींद न आना, इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप सुन के शायद आश्चर्यचकित भी होंगे, क्या इससे भी ठीक हो जाता है। मैं उनसे एक ही प्रैक्टिस कराता हूं कि रात को सोने से पहले 108 टाइम लिखो, मैं भगवान की संतान एक महान आत्मा हूं, बस मैं एक महान आत्मा हूं। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इस संकल्प के प्योर वाइब्रेशंस ब्रेन को जाने लगते हैं, ब्रेन को रिलैक्स करने लगते हैं। 5-7 दिन में ये होता है कि नींद आने लगती है लिखते लिखते, जो सोते नहीं थे और जो यहाँ ब्लॉकेज थे ब्रेन में वो खुलने लगते हैं और डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो छोटे-छोटे टेक्निक हम लोगों ने अपनाई जो अनुभव हुए राजयोग के द्वारा, और अच्छी सीवियर बीमारियां, कैंसर जैसे रोग, माइग्रेन होता है आधे सीसी दर्द जिसे कहते हैं, सिर का ठीक नहीं होता, सोरायसिस एक स्किन डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, ऐसे सब केस ठीक हुए तो एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमारे पास आया।
कितने सुंदर और सहज तरीके हैं जो सचमुच हमारे अंदर उत्साह पैदा करते हैं कि घर बैठे ही हम अपने द्वारा ही ये कर सकते हैं राजयोग के सुंदर अभ्यास से और इन छोटे छोटे टिप्स से। राधा जी जो बता रहे थे, मैं अमल नेर में था, एक भाई मेरे पास आए और उन्होंने कहा बस मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा 20 साल से मुझे माइग्रेन की तकलीफ थी और भाई साहब जो अभ्यास बताते हैं हाथों को रब करके अपने सिर पे रखने वाली, 3 दिन में वो माइग्रेन की तकलीफ मेरी दूर हो गई। तो कितनी सुंदर और एकदम चमत्कारिक से अनुभव है जो लोग सामने से आकर के हमसे शेयर करते हैं। दादा जी, ये शारीरिक बीमारी के साथ एक चीज जो और बढ़ती चली जा रही है, आज यदि एक लाइन में लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो डॉक्टर्स ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, कि हर चौथा और पांचवा व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। किसी को तनाव है, किसी को चिंता है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को नींद नहीं आ रही है। तो ये जो मानसिक बीमारियां हैं, रोग हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे या मेरे संबंधियों को, आसपास वालों को, उसके लिए क्या किया जाए?
देखिए, मैं यही सोच रहा था कि मैं ये बात आपके सामने रखूं। निगेटिव थिंकिंग के कारण या बचपन से ही किसी के साथ मिसबिहेव हुआ हो उसके कारण या बहुत सारे मनोविकारों के कारण अनेकों की जो ब्रेन है ना, इसमें ब्लॉकेज बहुत हो गए हैं। ये जो ब्रेन है मनुष्य का, इसकी रचना इतनी सूक्ष्म है, इसकी जानकारी इतनी सूक्ष्म है। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, 250 सर्जन ने हिस्सा लिया और इसी हॉल में थी और सभी एक मत से बोल रहे थे कि ब्रेन की नॉलेज सारी दुनिया की मेडिकल साइंस में केवल 10% है, 90% जानते ही नहीं हम सब के इस ब्रेन में क्या क्या भरा हुआ है। देखो छोटी सी चिप में भी कितना माल भर जाता है। आप सुन रहे होंगे पेट्रोल पंप पे लोगों ने चिप लगा दी और गड़बड़ कर दी सारी, अरबों की कमाई कर रहे लोग, काली कमाई, कि अगर एक लीटर तेल आपको भराना है तो 10% कम भरेगा आप ही उस छोटी सी चिप के कारण। ये कल परसों से हाईलाइट हो गया है न्यूज बहुत ज्यादा, तो सारे भारत में ये गड़बड़ बहुत हो गई। वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने वो चिप बनाई और वो सप्लाई कर रहा है सबको। तो ये ब्रेन तो बहुत बड़ा है, देखो 2 किलो का होगा सबके पास, इसमें न जाने क्या क्या माल भरा है, अच्छा बुरा, हजारों साल का सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह जान ली थी। तो टेंशन ने, चिंताओं ने, मनोविकारों ने, व्यसनों ने कई केंद्र ब्रेन के बंद कर दिए। इसको ब्लॉकेज कहते हैं वो लोग, ब्लॉकेज। इस ब्लॉकेज के कारण मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। युवकों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी कहते हैं, अति चिंता, नींद ना आना, एकदम उदास उदास युवकों में बहुत बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बहुत है उनके ऊपर। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये जो ब्लॉकेज हो गए हैं ब्रेन के, इन्हें खोल दिया जाए तो ब्रेन एफिशिएंट हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो मैंने ये ब्रेन को एनर्जी देने का, घुटनों को एनर्जी देने का, किडनी को एनर्जी देने का प्रयोग प्रारंभ कराया। क्योंकि सिंपल भाषा में, ना आप मेडिकल के स्टूडेंट हो ना मैं, सिंपल भाषा ये है, मैं हाथ यूज कर रहा हूं, ये उठा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, इसको कंट्रोल करने वाला एक सेंटर है हमारे ब्रेन में। हम आंखों से देख रहे हैं, इधर देखें, इधर देखें, आंखें बंद करें, खोलें, आंखों को कंट्रोल करने वाला एक सेंटर है ब्रेन में। हमारी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी में, बॉडी से बाहर, उन सबको कंट्रोल करने वाला एक एक केंद्र है हमारे ब्रेन में। वो ब्लॉक हो जाते हैं टेंशन के कारण। ये जो मनुष्य बहुत ज्यादा परेशानी फील करता है, उसे नींद नहीं आती। तो मैंने ब्रेन को एनर्जी देने की बात सोची। तो कैसे तरीका है, देखो आप सभी अभ्यास करो, हाथ मले मेरे साथ और अंदर में विचार करो, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, 3 बार तो कम से कम। अब अपने हाथ आप ऐसे छोड़ दो, 2-4 इंच की दूरी पे, 2-4 इंच, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं, नजदीक करो, एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस। देखो आपके हाथों में वाइब्रेशंस आए, ये जो एनर्जी है वो आपके हाथों में आ गई। अब इसको आप जहां रखेंगे हाथों को, आपको घुटने दर्द है, घुटनों पे रख दो 1 मिनट के लिए, तो ये एनर्जी घुटनों में जाएगी और दर्द को ठीक करेगी, बहुतों के दर्द ठीक हो गए। मेरे जहां तक मैंने देखा, कम से कम 1000 माताओं के दर्द ठीक हो गए, भाइयों को कम होता है उनके भी ठीक हो गए। 10 मिनट कर दो ऐसा, फिर दूसरी बार करके फिर हाथ रखो, फिर तीसरी बार हाथ रखो, ब्रेन को दे दें यही एनर्जी, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। यहां हाथ रख दें, आंखें बंद कर लें, 1 मिनट में ही आप पाएंगे आपका शरीर ठंडा होने लगा जो गर्म था। ऐसा 10 बार कर लें तो ब्रेन ठीक होने से सारे रोग ठीक, सारी मानसिक बीमारियां ठीक। लेकिन जब कोई मानसिक बीमार हो जाता है तो वो नहीं कर पाता, दूसरे को हम सिखाते हैं कि वो उसके लिए करे। और ये पानी चार्ज करे ऐसे, समझ गए ना, पानी चार्ज करना, पानी पे नजर डाल के 7 बार संकल्प करें, मैं पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्र किरणें आंखों से निकल के पानी में समा जाएंगी, वो बहुत रोग ठीक करेंगी। मैंने बुखार को तो फटाफट ठीक होते देखा है, 10-15 मिनट में बुखार गायब पीते ही। तो इस तरह से मानसिक रोगों को ठीक किया जाता है। रात को लिखना, मैं एक महान आत्मा हूं, और ये एनर्जी देना। एक और चीज है, जो बड़ी सूक्ष्म है, और मैं समझता हूं आप सभी उसको बिल्कुल सहज रूप से जान लेंगे। मान लो 1000 साल पहले आप राजा थे, सेनापति थे, आपके किसी गलत निर्णय से 1000 लोग बहुत दुखी हो गए, वो आपको बद्दुआएं देने लगे, ये राजा जल्दी मरे तो हमारे राज में सुख हो, बड़ा गंदा राजा है, बड़ा खराब अहंकारी सेनापति आ गया, सारी सेना को इसने तंग कर दिया है। अब आपको ये पता हो कि उनकी बद्दुआएं जो अब से 1000 साल पहले मिली थी वो अब तक भी आपका पीछा कर रही हैं, वो खत्म नहीं होती, इसलिए बिना मतलब भी लोग दुखी रहते हैं, बिना मतलब मन भारी रहता है। तो हम ये एक अभ्यास कराते हैं कि सवेरे उठकर 7 दिन तक करना होता है, केवल मन ही मन उन मनुष्य आत्माओं से क्षमा याचना कर लें जिनको हमने 1000 साल में कष्ट दिया है। सच्चे मन से क्षमा याचना करते ही ये रस्सियां कट जाएंगी, लाइन क्लियर होगी और ये मानसिक रोग समाप्त होने लगेंगे। मानसिक रोगों में मैंने ये बहुत बड़ी चीज पाई कि पूर्व जन्मों का ये इफेक्ट, जो बैड एनर्जी हमसे जुड़ी हुई है, उसको जब तक हम नहीं काटते तो कोई भी न दवाई काम करेगी न हमारे अभ्यास काम करेंगे। तो ऐसा कराने से बहुत सारे मानसिक रोगी ठीक हो गए।
चलिए, यहाँ सभी स्वस्थ बैठे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब इस हॉल से बाहर जाने के बाद सभी डॉक्टर बन करके जाएंगे और सभी को ये ट्रीटमेंट जरूर सिखाएंगे भी और करेंगे भी, क्योंकि किसी को तकलीफ से बाहर लाना इससे बड़ी सेवा तो और कोई है ही नहीं। आप सब देश की सेवा कर रहे हैं, हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों से भी और इन तकलीफों और विघ्नों से भी सुरक्षा करना अब ये भी आपका दायित्व हो गया है। अब आप यहाँ से डॉक्टर बन करके जा रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न मैं भ्राता जी के सम्मुख रख रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप अपने हाथ उठाइएगा जिन्हें भी पूछना है। भ्राता जी, परिवार और हमारी फील्ड में जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो वहां भी बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार बच्चों के साथ, कई बार बड़ों के साथ, कई बार अपने साथियों के साथ। तो संबंधों में मधुरता रहे, समरसता रहे, बहुत आनंद रहे, वहां कोई खिटखिट ना रहे, क्योंकि खिटखिट होती है तो फिर मजा नहीं आता जीवन का। यहां किस बात का ध्यान रखें, यदि संबंध बिगड़ गए हों तो कैसे सुधारा जा सकता है?
देखिए, सवेरे उठते ही, मैं बहुत थोड़े में उत्तर दूंगा, सवेरे आंख खुली, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, पहले 3 मिनट में आप संकल्प कर दें, मैं भगवान की संतान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, और ये सभी परिवार में, ये सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं, हमारे परिवार में बहुत प्यार है। आपका पति आपको परेशान करता हो, बहने संकल्प कर दें, ये मेरा पति मेरा गुड फ्रेंड है। आपकी पत्नी आपसे विरोध करती हो, ये मेरी गुड फ्रेंड है। 5-5 बार 7 दिन कर दो, रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।
लेफ्टिनेंट कर्नल सरिता यादव एंड आई कम फ्रॉम नारनौल हरियाणा। मेरा बड़ा बेटा है, लॉ कर रहा है, 8th सेमेस्टर में है, और जब से वो हमारे पास से दूर गया है तो वो आजकल हमारी सुनता ही नहीं है, वो अपनी ही चलाता है।
आप चाहते हैं वो आपकी सुने और वो चाहता है आप उसकी सुने, ऐसे ही ना। अब देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो मैच्योर भी हो गए, अब LLB वो कर रहा है, आप थोड़ा सा हल्का करो अपने को और उसको अपने प्रेशर से मुक्त करो, और रोज सवेरे उठ के ये संकल्प करो जो मैंने कहा, आई लव यू, वी लव यू, वी आर वेरी कोऑपरेटिव टू यू, ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। बाकी जितना आप प्रेशर डालेंगे, वो कहेंगे मैं वकील बनने वाला हूँ, ये मेरे को अपने आज्ञा पे चलाना चाहते हैं, थोड़ा अपने को हल्का करेंगे वो भी हल्का हो जाएगा। हंसी की बात मैं सुना दूं आपको, एक माता जी मेरे पास आई यही समस्या लेके, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है। सुन लेंगे आप, हंसेंगे भी। मैंने पूछा तुम्हारा पति क्या करता है? कहा यहाँ एक कॉलेज है, वहां जाता है, पढ़ाता होगा। मैंने कहा प्रोफेसर है क्या? कि हाँ प्रोफेसर है, समझ गई, लोग उसे प्रोफेसर कहते हैं। अच्छा, मैं कह माता जी तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, मैंने तो भाई जी स्कूल देखा नहीं है, समझ गए। एक बिना पढ़ी लिखी माता अपने प्रोफेसर पति पे राज करना चाहती है, गड़बड़ यही हो रही है बस। यस,
ओम शांति। मेरा नाम आरपी शर्मा है, मुंबई से आया हूँ। जैसा आपने बताया कि पूर्व जन्म के कर्म यहाँ तक हमारे साथ हैं, मेरे कुछ डाउट स्पिरिचुअल डाउट हैं। हम में से हमको या हमारे बच्चों को कभी समस्या होती है तो हम बहुत से पंडितों के पास जाते हैं, बहुत से गुरुओं के पास जाते हैं, कुछ न कुछ बहाना देते हैं, इसको ये दोष है, पितर दोष है, कालक्षर दोष है, क्या वो है या नहीं?
देखिए, ये इनका प्रश्न ठीक है। ये जो पितर दोष, राहु का दोष, शनि का दोष, हमारे पास भी बहुत सारे ज्योतिषी राजयोग सीखने आते हैं, हमसे भी चर्चा होती है, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। ये दोष जो जिस ग्रह का हम पे बुरा असर पड़ रहा है वो भी हमारे पाप कर्मों के कारण ही होता है, और यदि हम योग बल से उस पाप कर्म को नष्ट कर दें तो आप ये पाएंगे कि अगर आपको ज्योतिषी कहता है कि 3 साल तक ये राहु की दशा चलेगी और आप योग अभ्यास से उस पाप कर्म को नष्ट कर दें तो वो 3 साल की बजाय 1-2 मास में ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोनों इंटर रिलेटेड रहते हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक होते हैं पर वो पाप कर्मों के कारण है।
मतलब राजयोग हम सबको एक सुंदर चाबी यहाँ पे प्राप्त हुई है जिससे हम पूरी तरह से अपने दोषों को, अपने विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं। जी सर।
ओम शांति। मैं अजय कुमार जयपुर से। जीवन के अपने अनुभवों के कारण यदि कोई व्यक्ति पुनर्जन्म में और तदनुसार पूर्व जन्म और पश्चात जन्म में विश्वास ना करता हो या उसको दिक्कत होती हो, उसके लिए क्या?
उसे थोड़ी स्टडी करनी चाहिए पूर्व जन्मों के संबंधित ज्ञान की, और सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल इस पर मनोवैज्ञानिकों ने, हिप्नोटिस्ट ने बहुत रिसर्च कर ली है कि पुनर्जन्म तो होता ही है, और क्रिश्चियन रिलीजन वाले, मुस्लिम रिलीजन वाले जो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे वो भी अब मानने लगे हैं। थोड़ी स्टडी कर लेंगे आप, आपको क्लियर हो जाएगा।
अभी अध्यात्म के पद पे आप लोगों की यात्रा शुरू हुई है, आइए सर बाहर आ जाए, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और साथ ही सुंदर अध्ययन करें जैसे भ्राता जी ने कहा है, अवश्य ही पन्ने दर पन्ने खुलते चलेंगे और समस्याओं का समाधान होता चलेगा।
ओम शांति। मैं धर्मेंद्र कुमार विशाखापट्टनम से। आपने जैसा बताया था कि बच्चे मैथ के प्रति बहुत ही भागते हैं, मेरी बेटी जो 8वीं क्लास में पढ़ती है उसका भी यही हाल है, तो क्या उपाय करना चाहिए?
हाँ, वो मैंने उपाय बताया नहीं था, सुन लें और अपने बच्चों पर उसको प्रयोग कर लें। मान लो मैथमेटिक्स में ही कोई बच्चा कमजोर है या बहुत बोर फील करता है मैथमेटिक्स, उसको देखते ही उसको लगता है ये पता नहीं क्या आ गया है, ये मेरे बस का नहीं है, तो कारण क्या है कि मैथमेटिक्स को से रिलेटेड जो केंद्र है ना ब्रेन में, वो डल है, वो ब्लॉक है। अभी उसको खोलना है हमें, तो माँ ये प्रयोग कराए बच्चे से, छोटे बच्चे हैं, जब वो उठें तो लिख लेंगे आप पहला संकल्प, बच्चों से कराना है, मैं बुद्धिमान हूँ। 3 बार कराएंगे, भले मुख से बुलवाओ उनसे, मैं बुद्धिमान हूँ। इससे उनकी बुद्धि में जो कुछ भी ब्लॉकेज हैं वो खुलने लगेंगे। 21 दिन तक ये काम कराने हैं। दूसरा, जैसे मैथमेटिक्स की बात है, किसी भी सब्जेक्ट की हो उसको लेकर, आई लव मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं मैथमेटिक्स में बहुत जल्दी होशियार हो जाऊंगा, ऐसे संकल्प 3-3 बार करा दें उनसे, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो सेंटर है वो ओपन होने लगेगा और आप देखेंगे उसको मैथमेटिक्स में रुचि हो जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ओम शांति। मैं वीना सिंह नागपुर से आई हूँ। भाई जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया एक नवजात शिशु को जन्म से ही हार्ट पेशेंट था, वो तो वो उसके पूर्व जन्म का दोष था, यानी कि पूर्व जन्म में वो हार्ट पेशेंट होगा तो इस जन्म में भी वो हार्ट पेशेंट बन के आया। लेकिन जितना अभी तक मैंने सुना और समझा है तो लोगों ने ये बताया है कि बीमारी आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को होती है, और जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो सिर्फ वो बीमारी शरीर में ही रह जाती है, ना कि आत्मा के साथ जाती है।
हाँ, अभी आपको और भी कुछ जानना बाकी है इसमें
जी।
इस आत्मा के साथ और इसी शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो दोनों को इंटरेक्ट कराता है। ये शरीर जो दिखता है और आत्मा यहाँ जो नहीं दिखती, उन दोनों के बीच में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो ये सब बीमारियां जो स्थूल शरीर में होती हैं, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में भी जाता है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे गर्भ में जाती है, वो अकेली नहीं जाती, सूक्ष्म शरीर को लेकर जाती है, इसलिए वो बीमारियां उस शरीर में ट्रांसफर हो जाती हैं।
लेकिन हम बोलते हैं कि ये मुझे है, मेरे शरीर में ये बीमारी, ना कि बोलते मेरे आत्मा के साथ ये बीमारी।
नहीं, मैंने जैसे बताया बहुत बीमारियां इधर से शुरू हो रही हैं, और असली बीमारी आत्मा में ही है, विकारों की, उससे सब बीमारियां शुरू हुई हैं। और आप स्टडी कर लें सूक्ष्म शरीर की, तो आपको क्लियर होता जाएगा।
जी धन्यवाद।
अध्यात्म एक बहुत ही सूक्ष्म सा विषय है जिसपे सचमुच गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है।
दादाजी कह रहे हैं
जी, एक बार जरा हाथ उठाएंगे किन किन के क्वेश्चन है, ताकि 10 मिनट में मैं आप सबको कवर कर सकूं। ओके जी, मैं आता हूं उधर आपके लिए।
खड़े होके बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा।
ओम शांति। भाई जी, एक बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल हो जो सबके मन में होगा भी, यही कि बहुत जो हमारे फोर्सेज यहाँ पे आए हैं, सबसे जो मेन सवाल अभी दो दिन में सबके में यही पनप रहा है अभी कि मेडिटेशन और ध्यान, उसको कंसंट्रेशन होके कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आंख बंद करते ही मन चला जाता है कहीं पे, ड्यूटी पे, घर पे, कहीं भी भाग जाता है, फिर आप बोलते हो कि वापस आ जा, फिर भाग जाता है वो।
हजारों साल से मनुष्य ने अपने मन को भटकाया है, आज तो आपका पहला दिन है, थोड़ा सा टच किया गया है ज्ञान आपको, केवल टच किया है, समझो LKG होता है ना बच्चों के लिए, उसमें आपने अभी एडमिशन लिया है, अभी तो यात्रा थोड़ी आगे करनी है आपकी। कंसंट्रेशन एक अच्छा बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी संपूर्ण विधि आपको मिलती रहेगी, कल सवेरे भी परमात्मा का लेसन होगा, और जैसे जैसे इन चीजों को आप जानते जाएंगे और मन कहाँ भाग रहा है, ज्ञान का कौन सी बात प्रयोग करें मन को वहां से हटाने के लिए, तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन कम से कम 6 मास तो मनुष्य को अच्छी मेहनत अपने से करनी पड़ेगी इसके लिए।
ओम शांति
जी। हकलानी की जो बात आपने भ्राता जी कही थी, एक बच्चा पूरी तरह ठीक
हुआ, तो ब्रेन को ऐसे एनर्जी देनी है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और दोनों हाथ यहाँ रख देने हैं, यहाँ, क्योंकि यही वो दोनों ग्लैंड्स हैं जो हमारी वॉइस को कंट्रोल करते, ऐसे 10 मिनट रोज करेंगे। और इसमें एक विजन भी उनको हमने सिखाया था कि तुम ऐसा एक विजन बनाओ कि 3-4 मास के बाद मैं पब्लिक में खड़ा होकर फ्लुएंटली भाषण कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रवाह युक्त भाषण, तो ये दो चीजों से ठीक हो जाते हैं।
बाबा जी ओम शांति। मैं महेश एनर्जी से आया हूँ, मेरे बच्चे के दिल में छेद है 19 mm का, तो आपने एनर्जी देने के लिए बताया किस तरह से एनर्जी देनी है,
एनर्जी किस तरह देंगे बताई ना, ये विधि यही ना, देखो ये अभ्यास करना है, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, जैसे भगवान ऑलमाइटी है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो वो शक्तियाँ हाथों से निकलने लगेगी जहाँ भी आप उसे रखेंगे, हार्ट पे रखेंगे हार्ट में काम करेगा, किडनी पे रखेंगे किडनी, लीवर पे रखेंगे लीवर, ब्रेन पे रखेंगे, तो सबके लिए ये तरीका है।
ओम शांति। करण सिंह दिल्ली से। जैसे कहते हैं ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो क्लब क्लब ऐसे ही घूमता रहता है, या हम शॉर्ट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं?
तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं अपना पार्ट?
जैसे हमारा कोई पद था पहले क्लब में, उसे उसको बढ़ाना चाहें।
कौन सा था वो?
पता नहीं है तो
तो चेंज क्या करोगे? इसीलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं है कल क्या होगा, वो हमें पता थोड़ा है जिसको हम चेंज करें। हाँ भाई, कल आपको दिल्ली जाना है, आपने टिकट कैंसिल कर दिया, आप कहेंगे हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया, पर ड्रामा में वो चेंज पहले से ही था, आपने कुछ किया नहीं। इसको आप और स्टडी करते रहो, योग अभ्यास करो तो क्लियर हो जाएगा।
पर पहले अपने पार्ट से संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं इसको हम अच्छा बना लें।
देखिए कोई भी एक्टर अपने पार्ट से संतुष्ट न हो तो उसको सिखाया जाएगा ना, जो पार्ट तुम्हें मिला चाहे झाड़ू लगाने का मिला, उसको इतना अच्छा प्ले करो कि डायरेक्टर खुश होकर दूसरा पार्ट दे दे। तो जो आपको पार्ट मिला है, मान लो आप प्राइमरी टीचर हैं और आप बड़े टीचर्स को देख के परेशान होते हैं मैं प्राइमरी टीचर, तो आप प्राइमरी स्टूडेंट्स को इतना अच्छा पढ़ाओ कि आपकी वाह वाह हो जाए, तो अगला पार्ट आपका सुंदर हो जाएगा। जो पार्ट हमें मिला है उसको हम बहुत सुंदर प्ले करें।
ओम शांति, अजमेर सिंह हरियाणा से। सर आज तक जितने मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी है, किसी ने मेरे से वापिस पैसे नहीं दिए। एक बार ले लेते हैं मीठा बोल के, किसी ने भी नहीं दिए। एक और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर फतेहाबाद इंस्पेक्टर हूँ, आज तक मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की। नंबर दो, मेरे पास जमीन भी है, वारिस से मिली है 10-12 किले, लेकिन आज भी मैं कर्जवान हूँ सिर्फ रिश्तेदार दोस्तों की वजह से। 5 साल के पहले मैंने कन्या की शादी की थी, अंधी लड़की थी।
हाँ समझ गया समझ गया।
उस दिन के बाद तो मेरे को कोई पैसा देते ही नहीं।
देखिए बात ये है कि ऐसा नहीं कि आपने उन्हें पैसे दिए और वो लौटा नहीं रहे, उन्होंने आपको पैसे दिए थे, आपने लौटा दिए हैं। बी हैप्पी।
वैसे एक ताली इनके लिए और कि इन्होंने पूरे जीवन पूरी ईमानदारी से कार्य किया। प्लीज जोरदार ताली इनके लिए, ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है जो हम सबको अपनानी है।
और आपको विश्वास रहे कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी।
ओम शांति।
भ्राता जी, मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे किसी एक पर्टिकुलर विषय नहीं बल्कि उनका दिमाग ही पढ़ने के प्रति रुझान ही नहीं आता, उनको और सुस्त से रहते हैं, हमेशा सुस्ती, पढ़ने का नाम लेते ही बड़ों बड़ों को जैसे नींद आती वो भी सो जाते हैं।
समझ गया समझ गया। ये ऐसे बच्चे भी बहुत हैं ही, किसी भी क्लास में 2-4 बच्चे तो ऐसे मिलते ही हैं। अगर उनकी माँ थोड़ी मेहनत करे उनसे, एक तो रोज 10 मिनट उनके ब्रेन को एनर्जी दें, और सवेरे जब उन्हें उठाएं तो ये 5 बार उनसे बुलवाएं मैं बुद्धिमान हूं, और थोड़ा प्राणायाम कराएं उनसे, विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है ना, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, ये बहुत यूजफुल है मनुष्य के लिए, अनेक बीमारियों को भी ये ठीक करता है। 5-7 मिनट बच्चों को सिखा दिया जाए वो खुद ही करता
है। बड़ा बच्चा है, बड़ा है।
हाँ तो वो सीख जाएगा फिर, और उसको सिखा दो बोलना भी, लेकिन उसके ब्रेन को एनर्जी दी जाए, क्योंकि ये संभव है उसके ब्रेन में कुछ केंद्र ब्लॉक हों, वो खुल जाएंगे और उसका सब अच्छा हो जाएगा।
धन्यवाद।
वक्त वैसे हो रहा है, यदि आप सब चाहें तो क्या हम 5-7 मिनट और आगे लें? शुक्रिया शुक्रिया।
आगे आ जाइए आप, आगे आ जाओ कर्नल साहब आगे।
भाई जी।
हाँ
नमस्कार, प्रदीप पवार दिल्ली से हूँ सर। मेरी माता को मोतियाबिंद, सफेद मोतियाबिंद फैल गया आंख में, फूट गया, तो डॉक्टर ने कहा अब मतलब वो देखने मतलब या तो बदलनी पड़ेगी दोबारा नेत्र, तो अब उम्र ज्यादा हो गई है तो ऑपरेशन करने डरती है।
इसलिए ब्रेन को एनर्जी देना, आंखों को देना, ये दोनों 10-10 मिनट चालू कराओ, काफी मदद मिल जाएगी।
शुक्रिया।
इधर भाई रुपेश, इधर भी।
ओम शांति। डॉक्टर दलबीर सिंह गहलावत। एक्चुअली माय क्वेश्चन रिलेट्स टू माय टॉपिक्स सेल्फ एम्पावरमेंट फॉर मैनेजिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस। सर जस्ट अभी आपने बताया कि एक लड़के को सिर्फ एनर्जी से उसके दिल में छेद था, वो ठीक हो गया, तो आई थिंक वी हैव सॉल्वड ए इररेमेडियल प्रॉब्लम्स बाय दिस राजयोग। ओके, स्टिल वी हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच इज फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर आवर कंट्री, लाइक separatism, extremism, Maoism. Just I want to know whether this institution have taken some radicalization program to mend these peoples. If so, to what extent we have succeeded?
Collectively तो ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन हमारे उन क्षेत्रों में जो सेवा केंद्र हैं, वो सामूहिक योग अभ्यास इन सब के लिए कराते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में है, या कश्मीर में है, या और कहीं जहाँ जहाँ ये समस्याएं हैं, अलगाववादियों की है, माओवादियों की है, तो हम लोग एक जनरल रूप से तो यहाँ नहीं करते, पर हमारे सेवा केंद्रों पे इनके लिए प्रोग्राम होते हैं, एक एक घंटा योग अभ्यास, ताकि उनके चित्त शांत हो जाएं। पर ये कुछ समय का फेर है कि अब ये बात कुछ तीव्र गति से होके समाप्त हो जाएगा, अति होके अंत हो जाएगी इसकी।
ओम शांति। मैं प्रदीप शर्मा जयपुर से। जब से हम समझे हैं कि ये आत्मा या पढ़ा है या विद्वजनों से ये जाना है आत्मा के बारे में, तो हमने सुना कि आत्मा अपना जो पुराना शरीर त्याग करके और नया शरीर धारण करती है, तो क्या ये आत्मा कभी जो 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, तो पशु पक्षी आदि इनकी योनियां प्राप्त करती है या पशु पक्षी भी मर करके मनुष्य की योनि प्राप्त करते हैं?
नहीं, जैसे बीज होता है, गेहूं के बीज से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अमरूद का पेड़ पैदा हो जाएगा। ये आत्माएं बीज हैं अलग अलग, और जो जिसका बीज है ये शरीर रूपी वृक्ष वही पैदा होता है, इसलिए ये योनि परिवर्तन नहीं होता।
ओम शांति। मैं शीला तिवारी जबलपुर से हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा 25 साल का 6 महीना पहले इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे अपने मन की शांति चाहिए, तो मैं सारी कोशिश कर रही हूँ।
निश्चित रूप से आपके लिए बड़ी ये बात है, किसी का जवान लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस माँ पे तो बहुत भारी पड़ता है, सब समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज हो गई, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए अब आप एक तो ये जानकर कि वो भी आत्मा है और उसने पुनर्जन्म ले लिया दूसरी जगह,
वो समझ गई मैं, हाँ, कि पुनर्जन्म ले तो लिया, बहन बताती हैं,
आप अब
लेकिन
थोड़ा,
वो खुश है, मैं तो दुखी हूँ,
हाँ,
मेरे लिए क्या?
अब आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने चित्त को शांत करो, ताकि आपके शांति के वाइब्रेशन उसको भी पहुंचते रहें। मेडिटेशन ही इसका एकमात्र तरीका है जो मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में धैर्य देता है, बैलेंस लाता है जीवन में और चित्त को शांत करता है। आप शुरू करो, आपने कर ही दिया होगा और आपको यहाँ आके जरूर अच्छा लगा होगा और अच्छा योग अभ्यास आप सीख लो और बहुत जल्दी आप इससे बाहर आ जाएंगे।
हम सब भी आपके साथ हैं, हम
बस
सब भी
इधर भाई रूपेश भाई
का दान दें
इधर को और बस सब समाप्त करें।
लास्ट दिन का फिर सती जी आइए सर,
सवेरे के प्रोग्राम है ना फिर आपके।
सर ओम शांति। सर मेरा लड़की है ना सर, पहले अच्छा पढ़ता था, अब 6th से घर में सभी पढ़ के रिवेंज कर रहा, करेक्ट है, एग्जाम हॉल में स्कूल में जाएगा, सारा भूल गया सर।
क्या हुआ भाई, क्लियर नहीं है थोड़ा
सर? अभी घर में पढ़ने,
भाई आप सुन लो ध्यान से,
घर में पढ़ने के टाइम रिवीजन दे रहा है, अच्छा लिखता है, सब कुछ कर रहा है, स्कूल में जाने के बाद सारा भूल जाता है।
अच्छा, जाके भूल जाता है। एक तो बच्चों को यह ध्यान दिलाना चाहिए, ये बहुत एक सूक्ष्म बात है, कई बच्चे लेट के पढ़ते हैं, ऐसे लेट जाएंगे, किताब ऐसे रख के पढ़ते रहेंगे, कई बच्चे ऐसे करके पढ़ते हैं, तो जिस पोजीशन में पढ़ा जाएगा उसी पोजीशन में याद रहेगा, ये ध्यान रखना, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है ब्रेन की, इसलिए एक तो इस पे ध्यान दो कि वो कहीं लेट के या ऐसे वैसे बैठ के तो नहीं पढ़ता है, और ये अभ्यास उससे करा दो, सवेरे उठ के 7 दिन करा दो, बस मैं बुद्धिमान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरी मेमोरी बहुत पावरफुल है, अब जो मैं पढ़ूंगा एग्जाम में मुझे सब याद रहेगा। तो क्या होता है, बच्चों को फियर भी हो जाता है कि एग्जाम में मैं भूल ना जाऊं, जैसे वो बार बार भूलता है ना, तो फिर उसका ब्रेन का केंद्र ब्लॉक होता रहता है, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा।
थैंक यू सर, वम सती।
चलो भैया मेडिटेशन करेंगे सती जी।
चलिए भ्राता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हम जोरदार करतल ध्वनि से करेंगे कि उन्होंने बहुत ही सुंदर हम लोगों की सभी समस्याओं का समाधान किया है। अंत कर रहा हूँ एक छोटी सी बात से, किसी ने कहा कि यदि आप समस्याओं की ओर देखते हैं तो समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन यदि आप समाधान की ओर देखते हैं तो समस्याएं बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, सुलझती चली जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी काशी में चले जा रहे थे, जेब भरे हुए थे, बंदरों ने पीछा करना शुरू किया, स्वामी जी ने भागना शुरू कर दिया। एक गृहस्थ ने ऊपर से देखा, कहा स्वामी जी भागिए मत, सामना कीजिए। स्वामी जी की चेतना जागृत हुई, वो मुड़े और बिल्कुल एक योद्धा की तरह खड़े हो गए, और देखते ही देखते सारे बंदर 9-2-11 हो गए। तो आवश्यकता मुझे लगता है मित्रों जागृति की है, आत्म जागृति सभी समस्याओं को निर्मूल कर देगी, आपका जीवन भी बिल्कुल समस्याओं से मुक्त हो, ऐसी हमारी कामना है। प्राता जी का शुक्रिया अदा करते हुए हम अब मेडिटेशन की ओर चलेंगे, जो सभी समस्याओं का निदान करेगा।
मैं आपको कुछ संकल्प देता हूँ और 3 मिनट हम उसी में मेडिटेट करेंगे, लाल लाइट और ट्यून बजाएंगे। एकाग्र करें सभी दो मस्तक के मध्य में और स्वयं को चमकती हुई आत्मा देखें।